नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए बिहार सहित सभी राज्यों को हर एक पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देश दिया। पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी में अनियमितता की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा। राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी 31 दिसंबर तक रद्द की। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से राहत के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार सहित सभी राज्यों को हर एक पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव और केंद्रीय पंचायती राज सचिव ने इस संबंध में जारी पत्र में 26 दिसंबर तक ग्राम सभा बुलाने का आदेश दिया है। पत्र में कहा गया है कि लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें यह बताया जाए कि कैसे नया कानून मनरेगा से बेहतर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को किसानों तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर देशभर के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद में उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।
किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है तो मुझे आप बताओ गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं। इससे इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गांव की पंचायती प्लान बनाएगी गांव के विकास का।
पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को सौंपा है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे की खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर में 490 वाहनों की नीलामी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में अधिकारियों ने कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और पूरे मामले में मनमानी तथा दुर्भावना के संकेत मिलते हैं। खंडपीठ ने वाहनों की मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। साथ ही न्यायालय ने कहा कि नीलामी से पहले आवश्यक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया और कुछ चुनिंदा लोग ही बार बार वाहन खरीदते पाए गए, जिससे सांठगांठ की आशंका मजबूत होती है। राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी 31 दिसंबर तक रद्द कर दी है। विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सभी एटीएम राजस्व, डीसीएलआर और राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई है। मुजफ्फरपुर में जनकल्याण संवाद में फरियादियों की समस्याओं को सुनने के क्रम में विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 43 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। इस प्रोन्नति के तहत एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने युवा प्रतिभाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने और देश के खेल ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। इसके अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को मंत्रालय और उसके स्वायत्त निकायों में इंटर्नशिप दी जाएगी ताकि उन्हें खेल प्रशासन, संचालन और इससे जुड़े क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त हो सके। इस पहल का उद्देश्य खेल विज्ञान, डोपिंग रोधी उपायों, इवेंट मैनेजमेंट और एथलीट सहायता सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिभाएं तैयार करना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल से युवाओं को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा और वे खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगे। इस नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 452 इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर जारी रहेगा। ऊपरी हिमालय और राजस्थान की ओर से आ रही सर्द हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से ठंड और कनकनी का एहसास बढ़ गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह पटना, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, गोपालगंज, भागलपुर और पूर्णिया समेत कई जिलों में घना से अति घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।
24 दिसंबर 2025 राज्य के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा जैसी स्थिति होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है।
इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। कल नई दिल्ली पटना अमृत भारत एक्सप्रेस 10 घंटे और नई दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 7 घंटे देरी से पटना पहुंची। श्रमजीवी, हिमगिरी और संपूर्ण क्रांति समेत कई ट्रेनों का परिचालन भी विलंब से हो रहा है। इधर कोहरे के कारण कल पटना हवाई अड्डे से 8 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली से पटना आने वाली एक फ्लाइट को रायपुर डाइवर्ट कर दिया गया। पूर्णिया, दरभंगा और गया हवाई अड्डे से भी विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को 26 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। लखीसराय में 4 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शेखपुरा जिला प्रशासन ने 25 दिसंबर तक और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने 26 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के स्कूलों में पठन पाठन पर रोक लगा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। श्री नवीन आज शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पटना साहिब से भाजपा विधायक रत्नेश कुमार को विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा रत्नेश कुमार को सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक मनोनीत करने की सूचना दी गई थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मान्यता प्रदान की। सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 7 निश्चय योजना 3 की जानकारी हर घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने अधिकारियों को इस योजना का प्रचार प्रसार प्रभावी ढंग से करने और गलत सूचना तथा अफवाहों का तुरंत खंडन करने का भी निर्देश दिया। मध्याह्न भोजन योजना के तहत अब विद्यालय सहकारी समितियों से हरी सब्जी खरीदेंगे। मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र ने बताया कि पटना, दरभंगा, सुपौल और सहरसा समेत 20 जिलों में हरी सब्जी की आपूर्ति सहकारी समितियां करेंगी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों पर है। प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह 27 दिसंबर को तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना सिटी में आयोजित किया जाएगा। सिख संगतों की प्रभात फेरी आज तख्त साहिब से दानापुर हांडी साहिब गुरुद्वारा के लिए रवाना हुई। 11 दिनों तक चलने वाली प्रभात फेरी का कल समापन होगा। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर से चोरी के मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बेटावर कला गांव का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि अभी तक आभूषण की बरामदगी नहीं हो सकी है। मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसकी हम लोगों ने कल एटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग दो लोगों पे काम किए हैं और दो लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है, इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 10 और 11 जनवरी को, दूसरे चरण में 12 और 13 जनवरी को, जबकि तीसरे चरण की परीक्षा 15 और 16 जनवरी को होगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। दानापुर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर 20-20 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं पटना की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी गोरख राय को उम्र कैद की सजा और 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरी तरफ मुंगेर की विशेष उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी संतोष कुमार को 5 वर्ष कारावास की सजा के साथ 1,00,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गया जिले के खीजरसराय थाना क्षेत्र के खैरा गांव में करंट लगने से 3 युवकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 11,000 किलोवाट का तार टूटकर गिरने से ये हादसा हुआ। बेतिया जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों और जीविका दीदियों के बीच हुई हाथापाई की घटना में कॉलेज प्रशासन ने 4 छात्रों से माफीनामा बंद पत्र लेते हुए सभी को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नवीन। अखबार ने श्री नवीन के हवाले से लिखा है, बंगाल से केरल तक देश में भगवा लहरेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देश भर में आक्रोश। प्रभात खबर की सुर्खी है, अलर्ट, अगले 5 दिन बिहार में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फरार आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाने वाला पहला राज्य बना बिहार। राष्ट्रीय सहारा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, डिजिटल चुनौतियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। आज अखबार की सुर्खी है, राज्य में जनवरी से लागू होगा 4 नया श्रम कानून। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम की जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए बिहार सहित सभी राज्यों को हरेक पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देश दिया। पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी में अनियमितता की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा। राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी 31 दिसंबर तक रद्द की। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।